7 मार्च दिन भर दिन सोमवार मैं हूं रेहान फदर। यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की की आपात बैठक।
In a continent of 500 million people population, 1 million refugees is not a big deal.
छत्तीसगढ़ में ईसाई प्रार्थना स्थल पर हुए हमले के सिलसिले में 7 लोगों की गिरफ्तारी। अग्गे की 105वीं जयंती पर सुनवाएंगे उनसे की गई पुरानी बातचीत के कुछ अंश।
मैं शुरू से मानता रहा हूँ, अब भी मानता हूँ कि साहित्यकार का जो निजी जीवन है वो यथासंभव उसके साहित्य से अलग रहना चाहिए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ब्रसल्स में यूरोपीय संघ और तुर्की की इमरजेंसी बैठक हो रही है। नेटो ने ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। उसने तय किया है कि वो ग्रीस और तुर्की के इलाकों में अपने जहाज भेजेगा और यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। ब्रसल्स में होने वाली बैठक में यूरोपीय संघ के नेता तुर्की पर दबाव डालेंगे कि वह लोगों की आवाजाही पर रोक लगाए। उद्योगपति विजय माल्या को सोमवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल ने उनकी लगभग 504 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज कर दी। ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद माल्या अमरीकी कंपनी डियाजियो से मिले 7.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 504 करोड़ रुपए नहीं निकाल पाएंगे। माल्या ने 2013 में अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड UAL में बड़ी हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी थी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ मामला सुलझने तक रकम निकालने पर पाबंदी बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में कोट परिसर पर हुए आत्मघाती हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। शबकदर नामक शहर में हुए इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार हमलावर कोट परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को उड़ा लिया। हादसे के वक्त कोर्ट में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आलम जायब खान कहते हैं, धमाके से पहले हमने गोलियां चलने की 2 आवाज सुनी, जिसके बाद हमने भागना शुरू कर दिया। जब मैं कोर्ट के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे अपने करीब आने से मना कर दिया। उसके कहने के कुछ देर बाद ही तेज धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया। उसके कुछ समय बाद मेरे साथियों ने मुझे पानी दिया और मैं कोर्ट परिसर में गया। वहां मैंने एक पुलिसकर्मी, 3 महिलाओं और एक बच्चे का शव देखा। 40 मिनट तक कोई भी सरकारी मदद हमें नहीं मिली। हमने वहां घायलों और शवों को रिक्शे की मदद से अस्पताल भेजा। हादसे के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अंधाधुंध परमाणु हमलों की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू होने के बाद उत्तर कोरिया ने यह धमकी दी। की रिजॉल्व और फोल ईगल नाम के सालाना युद्धाभ्यासों से हमेशा तनाव की स्थिति बन जाती है। उत्तर कोरिया ने एक बयान में न्याय के लिए परमाणु हमले करने की बात कही है। एक अनुमान के अनुसार इस अभ्यास में 17,000 अमरीकी और 3,00,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्च पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य लोगों की तलाश हो रही है। रविवार को रायपुर के कामरडी इलाके में एक चर्च में प्रार्थना के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की थी। हमले में कई लोग घायल हुए थे। हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पुलिस जरूरी कदम उठा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यूरोप से। यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ब्रसल्स में यूरोपीय संघ और तुर्की की आपात बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि यूरोप का मौजूदा शरणार्थी संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। ब्रसल्स में होने वाली बैठक में यूरोपीय संघ के नेता तुर्की पर दबाव डालेंगे कि वो लोगों की आवाजाही पर रोक लगाए और यूरोपीय संघ से निर्वासित किए गए आर्थिक प्रवासियों को फिर से अपने यहां आने की इजाजत दे। बैठक में पहुंचे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने कहा है कि यूरोपीय संघ और तुर्की को एक दूसरे की जरूरत है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे संवादों का सार सुनिए अमर शर्मा से।
यूरोपीय संघ चाहता है कि प्रवासियों की आवाजाही पर लगाम लगाई जाए और उसकी योजना है कि बालकन देशों से होकर गुजरने वाला रास्ता शरणार्थियों के लिए बंद कर दिया जाए। यूरोपीय संघ तुर्की में पहले से मौजूद कुछ शरणार्थियों को यूरोप में बसाने की पेशकश करेगा। इसके लिए उसने तुर्की को 3 अरब यूरो की वित्तीय मदद देने का वादा किया है। बैठक में हिस्सा लेने पहुंची जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने बालकन के रास्ते को बंद करने के किसी भी ख्याल को खारिज कर दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्रास ने आरोप लगाया है कि कुछ देश यूरोप को एक किले में तब्दील कर रहे हैं और शरणार्थी संकट से निपटने से इनकार कर रहे हैं। सिप्रास का कहना है कि शरणार्थियों को यूरोपीय संघ के दूसरे सदस्य देशों में भेजना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा प्रवासी यूरोपीय संघ में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। ये खास तौर पर तुर्की से ग्रीस गए हैं। ज्यादातर प्रवासी ग्रीस से निकलकर उत्तरी यूरोप का रुख करते हैं, लेकिन 8 देशों ने अस्थायी सीमा नियंत्रण लागू कर दिया है। मेसिडोनिया, क्रोएशिया, हंगरी और स्लोवेनिया ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है, जिसके बाद अभी करीब 13,000 प्रवासी उत्तरी ग्रीस की सीमा पर फंसे हुए हैं। बैठक में पहुंचे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मार्टिन स्कल्स ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी नजर में ये बैठक दीवार खड़ी करने और शरणार्थियों को भगाने के लिए नहीं है।
Ich glaube nicht, dass das ein Gipfel ist, bei dem Türen geschlossen werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass wir
मुझे लगता है कि ये बैठक दरवाजों को बंद करने के लिए नहीं बुलाई गई है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि जिन शरणार्थियों को वाकई हमारी सुरक्षा की जरूरत है, उनकी मदद के लिए हम मानवीय तरीके ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, जो समझ में आ रहा है, वो हमारी प्राथमिकताएं नहीं हो सकते।
मार्टिन स्कल्स के शब्द। ग्रीस के MEP स्टिलियोस क्वाउलोग्लू ने कहा है कि प्रवासियों को जगह देना यूरोप के लिए वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं लगती।
इन अ कॉन्टिनेंट ऑफ 500 मिलियन पीपल पॉपुलेशन
50 करोड़ लोगों की आबादी वाले महाद्वीप में 10 लाख लोग कोई बड़ी बात नहीं है। वे इन्हें आसानी से अपने में समा सकते हैं, लेकिन असल में यूरोप में मूल्यों को लेकर समस्या है। वहाँ एकजुटता नहीं है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मूल्यों का कोई सम्मान नहीं है।
स्टिलियोस क्वाउलोग्लू के शब्द। बैठक में पहुंचे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने कहा कि यूरोपीय संघ और तुर्की को एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रसेल्स में हो रही ये बैठक साबित करती है कि तुर्की और यूरोपीय संघ एक दूसरे के लिए अति आवश्यक है। नेटो ने भी ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। उसने तय किया है कि वो ग्रीस और तुर्की के इलाकों में अपने जहाज भेजेगा और यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
यूरोपीय संघ और तुर्की की आपात बैठक।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब रुख करते हैं भारत का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईसाइयों के प्रार्थना भवन पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में दूसरे आरोपियों की भी तलाश हो रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि यह कोई सांप्रदायिक मामला है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
रविवार को राजधानी रायपुर से लगे कचना इलाके में ईसाई समुदाय के एक प्रार्थना भवन पर स्थानीय ग्रामीणों के हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि इस हमले को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला गांव की सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का कहना है कि रविवार को जब कुछ लोग प्रार्थना के लिए एकत्र हुए थे, उसी समय यह हमला हुआ।
14-15 लड़के थे, बजरंग दल के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे, आकर के सीधा तोड़ फोड़ करने लग गए, चर्च को मारे पीटे, महिलाओं के कपड़े फाड़े, एक महिला को नीचे गिरा के ब्लाउज सब फाड़ दिया उसका, हमारी बाइबल को फाड़ दिया, पोडियम को तोड़ दिया, ऑल्टर को तोड़ दिया, उसको रौंदा है। हमें इसमें पूरा एक षड्यंत्र दिखता है और ये पूरी सरकार इसमें होश में आए और इस षड्यंत्र को दूर करे और इस किस्म के तत्वों को बिल्कुल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने गांव की सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया और वहां प्रार्थना भवन बना लिया। इस सवाल के जवाब में अरुण पन्नालाल कहते हैं,
वो सब गरीब तबके के हैं, कोई लेबर है, मजदूर है, मिस्त्री है, वो लोग खुद मिलकर के उन लोगों ने चर्च बनाया है और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। किसी भी मिशन विशन का नहीं है, कोई भी उसमें ऑर्गेनाइज चर्च उसमें नहीं है और ना कहीं से कुछ होता है। वो लोग उल्टे अपना चंदा इकट्ठा करके पादरी को बुलाते हैं, उनको उसमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो चर्च चलता है।
हालांकि रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह का कहना है कि गांव के सार्वजनिक जमीन पर कब्जे को लेकर यह हमला हुआ और इसका किसी धार्मिक विवाद से कोई लेना देना नहीं है।
इट इज अ प्रेयर हॉल, यहां पे वीकली ये लोग गैदर होते हैं। इट इज ऑन एन एनक्लोज्ड पीस ऑफ कॉमन लैंड अगेंस्ट व्हिच द विलेजर्स हैव बीन एजिटेटिंग सिंस लास्ट वन ईयर। कॉमन लैंड होता है जो विलेजर्स में यूज होती है, जिसमें मतलब उसको इन्होंने एनक्रोच किया करके हॉल बनाया। इस पर से एक हफ्ते पहले एक मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में विलेजर्स ने इसी मुद्दे पर एक मीटिंग किया कि ये गलत है, हटवाना चाहिए, ऐसा है। दे हैव कंप्लेंड टू वेरियस सिविल अथॉरिटी। यहाँ पे एक लोकल कॉज है अतिक्रमण, जो पिछले एक साल से हो रहा है, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
फिलहाल पुलिस ने 6 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर का कहना है कि जल्दी ही दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
प्रार्थी ने यह बात बताई कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे प्रार्थना करने के लिए, वहाँ पर आरोपी घुसे, आरोपी वहाँ पर घुसकर उन लोगों ने वहाँ पे मारपीट की है, तो इस पे पुलिस ने FIR लॉन्च किया है। और
इस पूरे मामले पर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जाँच के लिए एक अलग टीम गठित की है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इस हमले के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
भारत में एक ट्राइब्यूनल ने अस्थायी तौर पर विजय माल्या को मिलने वाले $75 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए पर रोक लगा दी है। यह पैसा विजय माल्या को DRDO की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के लिए मिलने वाला था। विनीत खरे की रिपोर्ट।
बैंकों का कर्ज चुकाना पाने के कारण करीब 3 साल पहले किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। बैंकों ने अपना कर्ज वापस लेने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन ऐसा न हो सका। एक तरफ जहां विजय माल्या पर बैंकों का भारी कर्ज था, तो दूसरी ओर विजय माल्या पर रिपोर्टें छप रही थी कि वो कैसे शान की जिंदगी बिता रहे हैं। एक तरफ जहां किंगफिशर में काम करने वाले कर्मचारी तनख्वाहें न मिल पाने के कारण परेशान नजर आते थे, तो दूसरी ओर विजय माल्या IPL में महंगे खिलाड़ियों को खरीदते दिखते थे। जब खबर आई कि माल्या ने अपनी कंपनी को DRDO को बेच दिया है और कंपनी प्रमुख का पद छोड़ने के बदले उन्हें $40 मिलियन के अलावा बाकी का पैसा 5 किश्तों में मिलना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कर्ज देने वाले 17 बैंकों के समूह ने बेंगलुरु में ट्राइब्यूनल का रुख किया। बैंकों का कहना है कि DRDO की ओर से माल्या को मिलने वाले धन पर उनका हक है। ऐसी भी रिपोर्टें आईं कि विजय माल्या अब ब्रिटेन में ज्यादा वक्त परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। पिछले साल स्टेट बैंक ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर या स्वेच्छा से धन वापस न लौटाने वाला घोषित किया था। ट्राइब्यूनल के फैसले को माल्या के लिए झटका माना जा रहा है। माल्या ने हाल ही में जारी एक वक्तव्य में कहा था कि वो बैंकों के साथ कर्ज को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। माल्या ने इन आरोपों को गलत बताया था कि वो कर्ज चुकाने से भाग रहे हैं और ये कि वो DRDO के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ज्यादा वक्त ब्रिटेन में बिताना चाहते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वो लगातार जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहेंगे। बैंकों का ये भी कहना है कि माल्या को गिरफ्तार किया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। माल्या की किंगफिशर एयरलाइन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1600 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। दूसरे बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक और देना बैंक। उधर ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि ईडी या प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से धन को बाहर भेजने के मामले में केस दर्ज किया है। ये मामला माल्या पर IDBI के 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज से जुड़ा है। माल्या का कहना रहा है कि किंगफिशर एयरलाइन की विफलता का नतीजा आर्थिक कारण और उस वक्त की सरकारी नीतियां थी। ट्राइब्यूनल में मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होनी है।
विनीत खरे की रिपोर्ट। कोलकाता के पास एक युवती ने बलात्कार से बचने के लिए एक घर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। लड़की के सिर में चोट आई है। बलात्कार का प्रयास करने वाले लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कोलकाता फोन कर अमिताभ भट्टाशाली से संपर्क किया और इस घटना का विवरण मांगा।
ये घटना है रविवार शाम की करीब 7:30 ये घटना घटी है। कोलकाता से सटा हुआ जिला हावड़ा के लीलवा इलाके में, तो वहाँ एक दो मंजिली इमारत के बैल्कनी से एक लड़की, जिसका उम्र पुलिस ने अभी तक बताया नहीं, वो कूद पड़ी और कूदने से पहले वो चिल्लाती रही कि मुझे रेप किया जा रहा है, मुझे बचाओ करके। और आसपास के इलाके में काफी लोग वहाँ थे, तो ये चीख सुनकर वो जब आए तो लड़की तब तक नीचे गिर चुकी थी और नीचे एक बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद वो नीचे गिर गई थी। उस वक्त उस मकान के अंदर से तीन लड़के निकले, जिनका एक का बड़ी बहन की वो मकान बताया जा रहा है ऐसे। फिर जब उस इलाके के लोग पूछताछ करने लगे तब घटना का खुलासा हुआ और ये पता चला कि ये जो लड़की है ये रिश्रा इलाके में, हावड़ा का ही रिश्रा इलाके में रहती है, और इनका एक बहुत करीबी दोस्त जिनका नाम है नांटू, तो ये बुलाया था। और भोला, जिनके बड़ी बहन का मकान था, वो वहाँ तीन लड़के मिल करके दारू पी रहे थे और इस लड़की को भी वहाँ पर बुलाया लिया गया था। और ये बताया जा रहा है, ये आरोप है कि उस लड़की को जो ड्रिंक दिया गया उसमें कुछ दवाइयां मिला दिया गया था, जिसके वो थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले गए थे, और उसी वक्त इनके ऊपर जबरदस्ती करने का कोशिश किया गया और बचने के लिए इस लड़की ने बालकनी से कूद पड़ी।
इन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक?
जी बिल्कुल, उसी वक्त उस इलाके के लोग तीनों लड़के को पकड़ लिया था, पकड़ के थाने में ले गए। और एक तरफ जब लड़की को उनके चोट को ट्रीटमेंट करने के लिए अस्पताल भेजा गया, और ये तीन लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस लड़की ने पहले लिखित रूप से FIR करने से थोड़ा सा इनकार कर रही थी, पर बाद में पुलिस ने खुद स्वमोटो केस फाइल करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को आज कोर्ट भेजा गया।
और उस लड़की की हालत इस समय कैसी है?
जो बताया जा रहा है पुलिस के तरफ से कि लड़की की सर पे चोट लगी थी और वो अभी स्टेबल है, और उनके घर वालों को भी खबर भेज दिया गया है।
ये थे कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय को हिंदी के महानतम साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उन्हें 1979 में उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनकी 105वीं जयंती पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं अज्ञेय से की गई एक पुरानी बातचीत, जब वो 1981 में बुश हाउस पधारे थे और ओंकारनाथ श्रीवास्तव ने उनसे बात की थी।
असल में आपके नाम के साथ बड़ी दिक्कत है, अज्ञेय जी कहता हूँ तो मुझको लगता है कि कविता की बात करनी चाहिए, और वात्स्यायन जी कहता हूँ तो लगता है कि गद्यकार के रूप में आपसे बातचीत करनी चाहिए। ये सही है क्या?
नहीं, ऐसा क्यों, वात्स्यायन कहें तब तो शायद पत्रकार की बात करनी चाहिए
जी।
अज्ञेय ने तो गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, और शुरू से ही शायद सबसे पहले तो अज्ञेय नाम से कहानियाँ ही छपी थी मेरी।
जी हाँ, लेकिन आपकी कविता पुस्तकों के ऊपर अज्ञेय लिखा रहता है।
नहीं, जितना रचनात्मक साहित्य है सब में केवल यही नाम देता हूँ, इसी को कवि नाम या कि साहित्यकार का
जी
अब नाम मान लेता हूँ। बाकी जो फरमाइशी लेखन होता है या पत्रकारिता के अधीन जिस तरह का लेखन होता है उस सब में अपना नाम भी देता हूँ, उसको आजीविका के साथ जोड़ता हूँ और इसको कला के साथ अच्छा। जोड़ता हूँ, ये तो मोटा भेद ऐसा रहा है मेरे मन में।
तो इस वक्त भूल से अगर वात्स्यायन जी भी कह दूँ तो अज्ञेय जी को ही संबोधित कर रहा हूँ।
तो धीरे धीरे ये भेद वैसे मिटी रहा है।
जरा पीछे ले चलना चाहता हूँ आपको, शेखर एक जीवनी। हाँ। इस रचना के साथ आप एकदम छा गए थे हिंदी साहित्य के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि उसके दोनों भाग निकलने के बाद एक लंबा सिलसिला चला, आपसे सवालों की झड़ी लगी रही बराबर कि आप इसका तीसरा भाग कब लिख रहे हैं। ये इसमें कुछ कमी आई है या अब भी उसी तरह का ये सिलसिला कायम?
नहीं, पहले दूसरी तरह का उत्साह था लोगों में ये सवाल जब पूछते थे, लेकिन अब भी अक्सर पूछते हैं और अब तो मैं यही जवाब देता हूँ कि इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कौन उत्सुक होगा तीसरे भाग के लिए।
लेकिन कुछ क्या राज देंगे आप, कुछ आप वाकई कर रहे हैं इसके ऊपर कि नहीं?
नहीं, राज तो कोई नहीं है, कठिनाई ज़रूर एक है। तीसरा भाग बहुत पुराना लिखा हुआ तो है, जब पहले दो लिखे गए थे तब पूरा ही उपन्यास लिख दिया गया था, फिर दो भाग तो दोबारा तिबारा लिखे गए और प्रकाशित हो गए। उसके साथ अगर ये तीसरा भाग भी दो एक बरस के अंतराल से छप गया होता तो ठीक रहता, अब वो अंतराल इतना लंबा हो गया है कि एक तो जिस समय का वो उपन्यास है यानी आज़ादी से पहले के युग का, बल्कि सन 30-35 के आसपास का, उस समय की अपनी और उस समय के क्रांतिकारी की मनस्थिति में प्रवेश करना कुछ कठिनतर हो गया है मेरे लिए। तो पहले जो सहज भाव से जो लिख सकता, अब प्रयास करके उस मनस्थिति में जाना पड़ता है। और थोड़ा ये भी है कि उस समय की जो के जो विश्वास थे थोड़े वो भी बदल गए हैं, तो अब वो एक उतनी रचना या कि आत्मसंप्रेषण जैसी चीज़ नहीं रहेगी, एक एक तरह का व्यायाम भी उसमें शामिल हो जाएगा कि उस समय की मनस्थिति में प्रवेश करके ये कर सकता हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये नहीं कि ये वास्तव में मैं अपनी बात लिख रहा हूँ
जी, लेकिन तो भी पाठक यही मानते रहे हैं कि ये बहुत कुछ आत्मकथात्मक उपन्यास है। और मैं समझता हूँ कि जो आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि लोग आपके जीवन में झांकने की कोशिश करते रहे।
शायद मेरे जीवन के बारे में कम जानते हैं इसलिए।
यो मान लीजिए। जी हाँ
हाँ, मैं शुरू से मानता रहा हूँ, अब भी मानता हूँ कि साहित्यकार का जो निजी जीवन है वो यथासंभव उसके साहित्य से अलग रहना चाहिए, रखा जा सके तो रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि साहित्यकार के निजी जीवन के बारे में हम कुछ जानें तभी उसके साहित्य को हम ग्रहण कर सकें या कि उसका मूल्यांकन कर सकें, बल्कि कभी कभी उससे बाधा भी होती है। पुराने साहित्यकार, जितने भारतीय भाषाओं के बड़े साहित्यकार रहे, हम उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। किंवदंतियाँ ज़रूर हैं लेकिन वास्तविक जानकारी लगभग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनके ग्रंथों का आस्वादन नहीं कर सकते या कि मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये तो आधुनिक युग में कुछ जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उसके भी योग से ये प्रवृत्ति बढ़ गई है कि लेखकों से भी सवाल पूछे जाएं, उनको भी सामने लाया जाए। बिल्कुल अनावश्यक काम है लेकिन आजकल बहुत होने लगा है।
ये तो, आपने अनावश्यक कह दिया, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि ये तो आजकल हो रहा है, ये युग ऐसा आ गया है, शायद लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए पता नहीं समय ज़्यादा निकालते हैं या पढ़ने के ज़रिए ही ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर ये युग की एक मांग हो गई है, एक लक्षण हो गया है, तो फिर इसको अनावश्यक आप क्यों कहते हैं?
हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवश्यकता, मैं सोचता हूँ कि आवश्यक क्या है और क्या नहीं है, इसका निर्णय तो मैं चेतना का गुण मानता हूँ। और जिस तरह की लाचारियाँ हो गई हैं वो यंत्र के कारण आई हैं जिसमें कि चेतना नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें आज करना ज़रूरी हो गया है जो कि वास्तव में एक चेतन प्राणी के लिए अनावश्यक है।
से बात कर रहे थे ओंकार नाथ श्रीवास्तव। इस बातचीत को 1981 में रिकॉर्ड किया गया था। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपकी चिट्ठियों का। आपकी चिट्ठियों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और स्वाति बख्शी।
आपकी राय, श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूं स्वाति बख्शी और आज मेरे साथ जवाब देने के लिए मौजूद हैं।
नमस्कार, मैं यहाँ मौजूद हूँ राजेश प्रियदर्शी। जवाब कितना दे पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, शिकायतें बहुत हैं, आप पहले बता चुकी हैं।
आज आपको बहुत सारी शिकायतों के जवाब देने हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो ईमेल्स का जिक्र कर दूं। आशुतोष कुमार पांडे और शिंतु पोद्दार का ईमेल है, दोनों ही बिहार से आए हैं ईमेल्स, और ये लिखते हैं कि इन्हें प्रकाश झा का जो इंटरव्यू हमने संडे दिन भर में प्रसारित किया है उसकी तारीफ इन दोनों ने लिखी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिकायती पत्र बहुत सारे हैं। अनिल शुक्ला ने इलाहाबाद से ईमेल लिखा है, कहते हैं कि 7 मार्च को नमस्कार भारत में आपके जो प्रेजेंटर थे उन्होंने कहा कि मोदी का लंबा भाषण लेकिन हाथ लगी निराशा। उन्होंने इस तरह का एक फाइनल कमेंट दिया है अपने प्रसारण के दौरान, ये इन्हें बहुत ही बुरा लगा है और उनका कहना है कि इस तरह की बातें करना बीबीसी हिंदी को शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज, विश्व भारती में एक खामी, इन्होंने लिखा है कि श्वेत SP इनका नाम है जिन्होंने ईमेल भेजा है, मुझे नहीं पता कि ये सही लिखा गया है या नहीं, लेकिन इनका कहना यह है कि बीबीसी हिंदी से बहुत निराशा है इन्हें, क्योंकि पिछले कुछ समय में इनका कहना है कि निष्पक्ष खबरें इनको यहाँ पर सुनने को नहीं मिलती हैं। ये ईमेल हमें श्वेत SP ने भेजा है।
दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आप सब की शिकायतें जैसा हम कहते हैं शर्माते हैं, हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। जहाँ तक खबरों में निष्पक्षता का सवाल है, जो हमारी खबरें होती हैं उनमें सिवाय तथ्यों के कुछ नहीं होता। जो आप समाचार सुनते हैं, समाचारों के बाद जो चर्चा विश्लेषण इंटरव्यू और दूसरे तरह के कार्यक्रम होते हैं, विशेष रिपोर्टें होती हैं, उनमें आपको हो सकता है कि कहीं ऐसा महसूस हो कि हम निष्पक्ष नहीं हैं। तो आप हमें अगर थोड़ी सी मिसाल दे पाएँ, थोड़े उदाहरण दे पाएँ और बताएं, जैसे कि एक जिक्र आया इस बात का कि किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण निराशाजनक था, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खास रिपोर्ट मैंने नहीं सुनी है, इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारा प्रयास यही होता है कि जो समाचार हैं वो तो जो तथ्य हैं वही समाचार होता है, और उसके अलावा उस पर कोई विचार का घाल मेल बिल्कुल नहीं होता बीबीसी के कार्यक्रम में। लेकिन अगर एक रिपोर्ट होती है जिसमें रिपोर्टर बात करता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सभी पक्षों की जो राय है वो संतुलित तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि समान रूप से, लेकिन संतुलित तरीके से श्रोताओं तक पहुंच सके, और हमारा जो संपादकीय पैमाना है और कामकाज का तरीका है वो आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। हाँ, आप लोगों की अगर कोई शिकायतें हैं कि आप महसूस करते हैं कि हम कहीं निष्पक्ष नहीं हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम पक्षपात कर रहे हैं, तो दिन तारीख के साथ ये ज़रूर बताएं कि हमने कब और कहाँ कैसे पक्षपात किया, ताकि हम उसका एक बहुत सही तरीके से आकलन भी कर सकें और आपको ठीक से जवाब भी दे सकें।
तो त्रुटियों की जो बात आपने की, 7 मार्च के ही सुबह के नमस्कार भारत में त्रुटियों की बात कर रहे हैं सुरेंद्रनाथ सिंह नागांव असम से, कहते हैं कि मुख्य समाचार में पढ़ा गया कि भारत एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश से 13.5 ओवर से मैच जीत गया, जबकि भारत 13.5 ओवर में जीता था, न कि 13.5 ओवर में, जो कि क्रिकेट के हिसाब से 13.3 ओवर होता है।
जी बिल्कुल सही, ये सीधे सीधे गलती है। 13.5 का मतलब होता है 13 ओवर और 5 गेंदे, यानी एक गेंद बची हुई थी, तो वो 13.5 कतई नहीं है, और ये एक गलती है जिसके लिए हम पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ध्यान दिलाया, और माफी चाहते हैं कि हमने ऐसी बात कही।
ये चिट्ठी आई है श्याम सुंदर एरी की, जालंधर रोड कपूरथला पंजाब से। इन्हें रिहान फजल ने जो 26 फरवरी को रघु राय फोटोग्राफर पर विवेचना प्रस्तुत की, ये इन्हें पसंद आई। 4 मार्च को फिराक गोरखपुरी वाली विवेचना भी इन्हें बहुत पसंद आई। ये कहते हैं कि राजेश जोशी की आवाज़ सुनकर इन्हें अपने सहपाठी और परम मित्र मदन मोहन जोशी की याद आती है, जो इंग्लैंड में रह रहे हैं 1956 से।
क्या बात है, जिसकी भी याद आए, अच्छा है कि आपको किसी की याद आती है, यानी कि वो आपको अपने से और पहचाने से लगते हैं। बहुत शुक्रिया, और तारीफ के लिए भी बहुत शुक्रिया। रेहान फजल तक हम आपकी तारीफ पहुँचा देंगे।
संजय कुमार उपाध्याय हमीरपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि आपका प्रतिष्ठित समाचार रेडियो चैनल इतना एंटी नेशन समाचार क्यों प्रसारित करता है? क्या बीबीसी हिंदी को इसी मूल भावना से स्थापित किया गया था? खास तौर से कहते हैं कि बीबीसी हिंदी का जो फेसबुक है वो इतना एंटी नेशन न्यूज़ देता है जितना शायद ही कोई समाचार चैनल प्रसारित करता हो।
ये बहस बहुत लंबी है, अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि सहिष्णु कौन है और असहिष्णु कौन है और नेशन क्या है और एंटी नेशन क्या है और सरकार का समर्थन न करना एंटी नेशनल होना है नहीं होना है। तो जो आपने बातें कही हैं उसके जवाब में मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं, और हम सब मिलकर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। पूरा देश इस वक्त इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
और सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ब्रसल्स में यूरोपीय संघ और तुर्की की इमरजेंसी बैठक हो रही है। नेटो ने ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। उद्योगपति विजय माल्या को सोमवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल ने उनकी लगभग 504 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ मामला सुलझने तक रकम निकालने पर पाबंदी बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में कोर्ट परिसर पर हुए आत्मघाती हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।